नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।